नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा
और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर।
श्रोताओं, इस बार हम आपके साथ अपने पहली से 15 नवंबर के अंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसी वर्ष लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ और 6 दशक के बाद पहला अवसर इसी वर्ष आया जब कोई सरकार लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में जन विश्वास के साथ वापस लौटी। इतना ही नहीं, इसी साल केंद्र सरकार की कई योजना, नीति, पहल और अभियान के 10 साल भी पूरे हुए हैं। इसी में स्वदेशी को बढ़ावा देने वाली वोकल फॉर लोकल की पहल, मन की बात के रूप में परिवर्तनकारी जन संवाद, मेक इन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी अभियान, जनधन जैसी आर्थिक समावेशन की योजना, स्वच्छ भारत मिशन जैसी व्यवहारगत परिवर्तन की पहल ने दशकीय यात्रा से मील का पत्थर हासिल किया। आजादी के आंदोलन के समय आत्मनिर्भरता की अलग जगाने वाले स्वदेशी आंदोलन की तरह ही बीते एक दशक में वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसी पहल नव स्वदेशीकरण का नवोत्सव बन गया है। यही इस बार के त्योहारों के मौसम में हमारी आवरण कथा बनी है, जिस पर हम पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अभी बात चल रही है पत्रिका के अन्य आकर्षणों की, जिनमें कुछ की चर्चा कल के कार्यक्रम में हुई और कुछ पर होगी आज। व्यक्तित्व की कड़ी में भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश की सेना के साथ दीपावली, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम इस अंक में शामिल हैं। साथ ही इनसाइट में अयोध्या में दिवाली और बैक कवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर प्रिय गौ माता ने दिया था एक नव वत्सा को जन्म, जो नंदी दीप ज्योति की चित्रमयी प्रस्तुति के साथ विशेष रूप से शामिल है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं वोकल फॉर लोकल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार।
जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन मिलते हैं तो क्या कमाल होता है, ये पूरी दुनिया ने G20 क्राफ्ट बाजार में भी देखा है। G20 में हिस्सा लेने के लिए जो विदेशी मेहमान आए थे उनको भी गिफ्ट में हमने विश्वकर्मा साथियों के बनाए सामान ही भेंट में दिए। लोकल के लिए वोकल का ये समर्पण हम सभी का, पूरे देश का दायित्व है। क्यों इसमें ठंडे पड़ गए? ना, मैं करूं तो खूब ताली बजाते हो, आपको करने की बात आए तो उठ जाते हो। आप मुझे बताइए, हमारे देश में जो चीजें हमारे कारीगर बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं, वो दुनिया के बाजार में पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? दुनिया के बाजार में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? तो ये काम पहले लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा और फिर लोकल को ग्लोबल करना होगा।
व्यक्तित्व की श्रेणी में इस बार लाल कृष्ण आडवाणी को शामिल किया गया है, जिन्होंने राजनीतिक नैतिकता में अनुकरणीय मानक स्थापित किया। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता के रूप में राष्ट्रीय निर्माण के कार्य में अहम योगदान देने वाले लाल कृष्ण आडवाणी का भारत के विकास में योगदान अविस्मरणीय है। समाज और राष्ट्र के लिए समर्पण एवं भ्रष्टाचार से दूरी को मंत्र बनाकर उन्होंने राजनीति में अपनी नई पहचान बनाई। करीब 7 दशक की राजनीतिक यात्रा में विचारधारा और ठोस नीति अपनाने वाले आडवाणी ने सांसद, मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट योगदान दिया। 31 मार्च 2024 को उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत पाकिस्तान में हुआ था। 1936 से 1942 तक कराची के सेंट पेट्रिक स्कूल में पढ़ाई की और 10वीं तक हर कक्षा में प्रथम आए। इसके बाद उन्होंने गिडुमल नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया और बाद में कराची के मॉडल हाई स्कूल में बतौर शिक्षक नौकरी की। बंटवारे के बाद वो दिल्ली आ गए। वो 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। 1947 से 1951 तक अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में आरएसएस को संगठित करने का काम किया। दिसंबर 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए।
आपातकाल के दौरान 26 जून 1975 को उन्हें बैंगलोर से गिरफ्तार कर लिया गया। वो मार्च 1977 से जुलाई 1979 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। मई 1986 में वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम मंदिर रथ यात्रा निकाली। अक्टूबर 1999 से लेकर मई 2004 तक उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार संभाला। जून 2002 से मई 2004 तक वो देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करते रहे। लाल कृष्ण आडवाणी आजीवन निस्वार्थ भाव से देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित रहे। उनको भारतीय राजनीति में प्रामाणिकता के मानक तय करने वाले राजनेता के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न की घोषणा पर एक बयान जारी कर उन्होंने कहा, अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ मैं भारत रत्न को स्वीकार करता हूं। ये न केवल एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है जिनकी मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा की है। पत्रिका के संक में व्यक्तित्व की श्रेणी में उनकी प्रेरणा भरी यात्रा पढ़ी जा सकती है।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और इसके आसपास के शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तेज गति से काम कर रही है, ताकि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से इन शहरों को तैयार किया जा सके। रेल, मेट्रो, सड़क, एयरपोर्ट व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के साथ साथ व्यापारी, किसान, विद्यार्थी और महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर काम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के कई शहर में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के ठाणे में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले दुनिया भर के मराठी भाषियों को बधाई दी, क्योंकि हाल ही में केंद्र की सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र की धरती से ही देश के करीब 9.5 करोड़ अन्नदाता किसान को पीएम किसान सम्मान निधि को 18वीं किश्त के तौर पर 20,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में जारी की गई। इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को जारी की गई कुल धनराशि 3.45 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। केंद्र सरकार के इस निर्णय ने किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही खेती किसानी में भी मदद की है। महाराष्ट्र के किसानों को भी बड़ी संख्या में इस योजना का लाभ मिल रहा है।
महाराष्ट्र के ठाणे में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की मुंबई एमएमआर परियोजनाएं शुरू की और 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की ठाणे इंटेग्रल रिंग मेट्रो रेल की भी आधारशिला रखी। इन विकास परियोजनाओं से मुंबई और ठाणे को नई पहचान मिलेगी, साथ ही आसपास के शहरों को भी लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने मुंबई के RAJVLR से BKC के लिए एक्वा मेट्रो लाइन की भी शुरुआत की, जिसका लंबे समय से मुंबई के लोग इंतजार कर रहे थे। आज हर भारतीय का उद्देश्य विकसित भारत है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुंबई और ठाणे जैसे शहरों को भविष्य के लिए तैयार करना आवश्यक है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र से संबंधित लगभग 23,300 करोड़ रुपए की विभिन्न पहलों का भी शुभारंभ किया है। बोहरा देवी में पीएम मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये नवनिर्मित संग्रहालय भावी पीढ़ियों को बंजारा समुदाय की प्राचीन संस्कृति और उनकी समृद्ध विरासत से परिचित कराएगा। राज्य के सभी नागरिकों को किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के मुंबई, नाशिक, जालना, अमरावती, गढ़चिरौली, बुलढाणा, वाशिम, भंडारा, हिंगोली और ठाणे में स्थित 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ किया। इन मेडिकल कॉलेजेस में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई होगी और मरीजों के लिए इलाज की आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इनके अलावा भी महाराष्ट्र को मिली अन्य सभी सौगातों की जानकारी इस पत्रिका में शामिल है।
दिल्ली के विज्ञान भवन में 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। सुपरस्टार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमा की उत्कृष्टता का प्रतीक है, जो न केवल प्रतिभा का सम्मान करती है बल्कि हमारे सांस्कृतिक विविधताओं को भी प्रोत्साहित करता है। भारतीय सिनेमा दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। यहाँ कई भाषा और देश के सभी क्षेत्रों में फिल्में बनाई जाती हैं। फिल्में हमारे समाज की कलात्मक भावना को दर्शाती है। जीवन बदल रहा है, कला के मानक बदल रहे हैं, नई आकांक्षाएं पैदा हो रही हैं, नई समस्याएं उभर रही हैं और नई जागरूकता बढ़ रही है। इन सभी परिवर्तनों के बीच प्रेम, करुणा और सेवा के अपरिवर्तनीय मूल्य आज भी हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को सार्थक बना रहे हैं। ये सभी मूल्य पुरस्कृत फिल्मों में दिखाई देते हैं।
पुरस्कृत फिल्मों की भाषाएं और पृष्ठभूमि भले ही अलग अलग हों, लेकिन वो सभी भारत का प्रतिबिंब हैं। ये फिल्में भारतीय समाज के अनुभवों का खजाना है। इन फिल्मों में भारत की परंपराएं और उसकी विविधता जीवंत उठती है। कार्यक्रम में वितरित किए गए 85 से अधिक पुरस्कारों में से 15 पुरस्कार महिला कलाकारों को मिले। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने फिल्म उद्योग में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की और इस बात पर बल दिया कि पुरस्कृत फिल्में सकारात्मक सामाजिक बदलाव को दर्शाती हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को भारतीय सिनेमा का गौरव कहा जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 1954 में। ये फिल्म और कलाकारों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए सत्यजीत रे को 6 बार नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन को 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, जबकि शबाना आजमी को 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से जुड़ी सभी जानकारियां पत्रिका में शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विश्व समुदाय को संदेश दिया कि भारत एक शांति प्रिय देश है, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं, यही अन्य देशों से भी अपेक्षा रखते हैं। जब विश्व का एक बड़ा हिस्सा तनाव और संघर्ष के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में भारत आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन में मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी लाओ पीडीआर के वियतियाने ने 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। सामरिक दृष्टि से भी ये संगठन भारत के लिए महत्व रखता है। इस संगठन की महत्ता इस बात से भी साबित हो रही है कि पीएम मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में 11वीं बार शामिल हुए। 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आसियान शिखर सम्मेलन में ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले 10 वर्षों में आसियान भारत व्यापार दुगुना होकर $130 अरब से अधिक हो गया है। आसियान आज भारत के सबसे बड़े व्यापार और निवेश भागीदारों में से एक है। आसियान के 7 देश के साथ सीधी उड़ान से संपर्क स्थापित हो गया है। इस शिखर सम्मेलन में लिए गए सभी प्रस्तावों की जानकारी पत्रिका में पढ़ी जा सकती है।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं पत्रिका के नए अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और अगर चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग खास पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने अनमोल सुझाव भी भेज सकते हैं, जिनका रहता है हमें हमेशा बेसब्री से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं हूं विनीता ठाकुर।
दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।